ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दो दिन के सरकारी यात्रा पर फिजी के नाडी पहुंच गई हैं। उप प्रधानमंत्री विलियम गावोका और भारत के उच्चायुक्त पीएस कार्तिकेयन ने उनकी अगवानी की। भारत के किसी राष्ट्रपति की ये पहली फिजी यात्रा है। लोकसभा ने वर्ष 2024-25 के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों को चर्चा के बाद मंजूरी दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि मोदी सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजटीय आवंटन 2013-14 के 33,278 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 2024-25 में 90,958 करोड़ रूपये हो गया है। इसमें 164% की वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि कुल बजट में से 55% राशि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से खर्च की जाती है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार धीरे धीरे स्वास्थ्य बजट बढ़ा रही है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर ऋण की उपलब्धता 2014 के 7,30,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2024-25 में 25,46,000 करोड़ रुपए हो गई है। उन्होंने बताया कि सरकार ने किसानों के कल्याण और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं। शिक्षा राज्य मंत्री डॉ सुखना मजूमदार ने कहा है कि दो विदेशी विश्वविद्यालयों ऑस्ट्रेलिया के डिकिन विश्वविद्यालय और वोलोगोंग विश्वविद्यालय ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए हैं। लोकसभा में आज एक लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि डिकिन विश्वविद्यालय का पहला बैच पिछले महीने की 3 तारीख को शुरू हो गया है, जबकि वोलोगोंग विश्वविद्यालय में प्रवेश अभी जारी है। सरकार ने आज संसद में बताया कि विदेशों से 2014 के बाद से अब तक 345 प्राचीन कलाकृतियां वापस लाई गई हैं। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि सर्वाधिक 283 प्राचीन कलाकृतियां अमेरिका से वापस लाई गई हैं। ऑस्ट्रेलिया से 40 और यूनाइटेड किंगडम से 16 कलाकृतियां पिछले 10 वर्ष में भारत लाई गई हैं। उन्होंने कहा कि सर्वाधिक 159 कलाकृतियां वर्ष 2021 में भारत लाई गई, जबकि पिछले साल 115 शिल्पकर्मियों को देश वापस लाया गया। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने जानकारी दी है कि पिछले महीने के अंत तक असंगठित क्षेत्र के 50 लाख से अधिक श्रमिकों ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए पंजीकरण कराया है। यह योजना 18 से 40 वर्ष की आयु के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करती है। इसे फरवरी 2019 से शुरू किया गया था। एक लिखित उत्तर में श्रम रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने बताया कि हरियाणा में सबसे अधिक श्रमिक पंजीकृत हुए हैं। श्रीमती करंदलाजे ने कहा कि हरियाणा से 8,25,000 से अधिक, उत्तर प्रदेश से 6,08,000 से अधिक और महाराष्ट्र से 6,01,000 से अधिक असंगठित श्रमिकों ने इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए काम करना जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि साथ ही आने वाले समय में राज्य के लोगों के आकांक्षाओं को भी पूरा करेगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आज 5 अगस्त को संसद ने अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने का निर्णय लिया था। यह निर्णय राष्ट्र के इतिहास में एक अविस्मरणीय क्षण था। उन्होंने कहा कि यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख की प्रगति और समृद्धि के एक नए युग की शुरूआत का समय था। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के संविधान को पूरी भावना के साथ इन स्थानों पर कार्यान्वित किया गया था। यह संविधान बनाने वाले महान लोगों के दृष्टिकोण के अनुरूप था। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35A के हटाए जाने के साथ विकास से वंचित महिलाओं, युवाओं, पिछड़ा वर्ग, जनजातीय और हाशिए पर रहने वाले समुदायों की सुरक्षा, सम्मान और अवसर उपलब्ध हुआ। श्री मोदी ने कहा कि साथ ही दशकों से भ्रष्टाचार से पीड़ित जम्मू कश्मीर को इस समस्या से मुक्ति मिली है। बांग्लादेश में पुलिस और सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पों से स्थिति गंभीर बनी हुई है। देशभर में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने आज ढाका तक लंबे मार्च का ऐलान किया। सरकार ने अशांति को रोकने के प्रयास में देश के कई हिस्सों में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है और मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।